नमोम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक 12 से प्रारंभ करेंगे। न ते यदा ओम इति प्रोचुः न नेति च परंतप गोपः निराशः प्रत्यत्य तथोचुः कृष्णरामयः। नते यदोमिति प्रोचुः न नेति च परं तप गोपा निराशा प्रत्यत्य तथोचुः कृष्णरामयः। तदुपाकर्ण्य भगवान् प्रहस्य जगदीश्वरः व्याजहार पुनर्गोपान् दर्शयन् लौकिकीं गतिम् माम् ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससंकर्षणमागतम् दास्यन्ति कामम् अन्नम् वः स्निग्धमयैव सीता धिया। गत्वाथ पत्नीशालायां दृष्ट्वा सीनः स्वलं कृतः नत्वा द्विजसतीर्गोपः प्रश्रिता इदमब्रुवन् नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निबोधत वचांसि नः इतो विदुरे कृष्णेन। इतो विदुरे चरता कृष्णेनेह सीता वयम् गाह चारयन् स गोपालैः सरामो दूरमागतः बुभुक्षितस्य तस्यानं सानुगस्य प्रदीयताम्। श्रुत्वा चितमुपायातम् नित्यं तद्दर्शनोत्सुकः तत्कथाक्षिप्तमनसो बभूवूर्जातसम्भ्रमः। न न ते वे ब्राह्मण जदा जब ओम इति, ठीक है हम देंगे, प्रोचुः बोले, न और न, न इति हम नहीं देंगे, ये भी नहीं बोले, च और परम तपा, हे शत्रुओं को तपाने वाले परीक्षित महाराज, गोपाहा गोपगण, निराशाहा निराश होकर, प्रत्यत्य लौट कर आकर, तथोचुः तथा उचुः, जो इन लोगों ने कहा था, प्रणाम आदि किया था, और इसके बाद ब्राह्मणों ने जो किया, इसको उचुः बताए। कृष्ण रामयोः, श्री कृष्ण और श्री बलराम से। ओम इति स्वीकार, जब गोपों ने प्रणाम किया और भोजन देने के लिए, भात देने के लिए ब्राह्मणों से विनती किया और कुछ देर प्रतीक्षा करते रहे कि ये क्या कहते हैं, लेकिन जब वे ओम इति भी नहीं बोले और न इति भी नहीं बोले, हाँ हम देंगे, ओम का अर्थ है हाँ हम देंगे, ये भी नहीं बोले और हम नहीं देंगे ये भी नहीं बोले, दस्याम इति न प्रोचुः और न प्रत्युत्तरम ददु, न दस्याम न दास्याम इति च न प्रोचुः। दुर्मान ग्रस्ततया अत्यंत अवज्ञानात्, वे दुर्मान में थे, अपने को बहुत बड़ा मान रहे थे, वे सोचे कि इन लड़कों से, गाय चराने वालों चराने वालों से हम क्या बात करें, ऐसे तो आते ही रहेंगे, हम लोग तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो हे परम तपैति, परम मद लक्षणम शत्रु भवादृगे व नियंत्रम शक्नोति न तु अन्य इति। ये मद जो है मनुष्य में, ये बहुत बड़ा शत्रु है, घमंड। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज परीक्षित, आप जैसा व्यक्ति ही मद पर नियंत्रण कर सकता है, दूसरा नहीं, आप परम तप है, परम मत शत्रु को तपाने वाले, वश में करने वाले। ये ब्राह्मण मद के अधीन थे, अथवा तादृशम अवैष्णव रूप शत्रु राज्य निसारय दंडय चैती अर्थ। यदा तान प्रति राज्ञो अंतः क्रोधम आलक्ष्य तदुपशमनार्थम समुदय, अथवा महाराज को क्रोध आ गया था ब्राह्मणों के प्रति कथा सुनकर, तो उनको संबोधित कर रहे हैं, उनके क्रोध का शमन करा रहे हैं कि आप परम तप हैं, आप शत्रुओं को दंड देते हैं, ब्राह्मणों को नहीं। एक ब्राह्मण के गले में सांप डाले तो ये दशा हुई कि 7 दिन में मरने का सांप मिला, ब्राह्मणों पर क्रोध मत कीजिए, एक ये भाव।
परम तप। कृष्ण रामयो हरिति, कृष्ण प्रेषित तत्वाद आदव कृष्णम प्रति पश्चात रामम प्रति। कृष्ण ने भेजा था और ये गोप निराश होकर के आए थे, तो सबसे पहले कृष्ण से ही शिकायत किए, कृष्ण भेजे थे और बाद में बलराम जी से, इसलिए कहा गया कृष्ण रामयो, कृष्ण और राम से कहे, अथवा कृष्ण अनादरेण रामस्य क्रोध संकया तम प्रति गौणत्वेन उक्ते। अथवा इन गोपों ने सोचा कि कृष्ण का अनादर किया है ब्राह्मणों ने, तो इस सुन करके राम को क्रोध होगा, इसलिए उनसे पहले नहीं कहे, बाद में उनसे कहे। यद्वा श्री कृष्णस्यैव प्राधान्यात्, अथवा श्री कृष्ण ही प्रधान है इस अन्न याचना में और सब, इसलिए उन्हें से ही पहले बोले। परम तप का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं कि महाराज यदि आप उस समय राजा रहे होते तो इन ब्राह्मणों को अवश्य दंड दिए होते, ये अर्थ करते हैं। तदानिम यदि तुम राजा अभविष्य तदा ब्रह्मांड चूड़ा मणि रपी तान ब्राह्मणन शत्रु निव अवश्यम अदंड ईसा इसे भाव। यद्यपि आप ब्रह्मांड शिरोमणि हैं, फिर भी बिना दंड दिए नहीं रहे होते ब्राह्मणों, भगवान की याचना को उन्होंने ठुकराया। तदुपाकर्ण्य भगवान प्रहस्य जगदीश्वर व्याजहार पुनर्गोपान दर्शयन लौकिकीं गतिम। गोपों के द्वारा यह बात सुन करके कि ब्राह्मणों ने कुछ भी भोजन नहीं दिया, तो इसको भगवान ने बहुत निकट से सुने। वो बच्चे आए तो थोड़ा ऊंचा बोल रहे थे, तो भगवान तो सर्वज्ञ जानते ही हैं कि आएंगे तो ब्राह्मणों के विषय में अनुचित बोलेंगे, इसीलिए भगवान उनके पास निकट चले गए और कहे धीरे 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 बोलो, किसी की शिकायत करनी है बड़े लोगों की, तो भगवान नहीं चाहते हैं कि शिकायत फैले। तो उप आकर्ण, उप का अर्थ निकट, उनको देखे कि अभी आ रहे हैं और ये बोले हैं थोड़ी सी बात कि वे नहीं दिए, तो भगवान ने देख लिया कि अब ये गाली देना चालू करेंगे, चाहे कुछ बोलेंगे, साला वाला कहेंगे, सारे नहीं दिए, वो ब्रजवासी हैं, तो भगवान निकट हो गए। श्री बलराम जी न सुने ज्यादा, नहीं तो उनको और क्रोध हो जाएगा, तो भगवान उनके निकट मुख के पास अपना कान देकर कहेंगे धीरे धीरे। तो हंस रहे थे, जानते थे कि, और हंसने का एक अभी कारण था कि जानते थे कि इनको मिलेगा नहीं और आएंगे तो ये लोग गर्म होंगे, तो वे हंस रहे थे, निकट से कान लगा करके सुने। तब उपाकरण, इस बात को सुनकर जगत नियंता श्री भगवान हंसने लगे और ब्याज हार पुनर्गोपन दर्शन लौकी किम गति, और लोक में लोक की जो गति है, लोक का जो स्वरूप है, लोक में जैसा होता है उस गति को दिखाते हुए इस प्रकार गोपों से बोले। भगवान ये दिखा रहे थे कि यही होता है दुनिया में, कोई कर्जार्थी है, कोई कार्य करना चाहता है तो उसको निराश नहीं होना चाहिए, उसे अपना काम करना चाहिए, कोई स्वीकार करेगा कोई नहीं स्वीकार करेगा। इन लोगों को जरूरत थी भात की या भोजन की, ये जरूरत, तो एक व्यक्ति मांगने पर नहीं दिया, चाहे दो चार लोग एक जगह पर नहीं दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कोई नहीं देगा, तो निराश नहीं होना चाहिए और अपना अपमान भी नहीं समझना चाहिए भिक्षुक को, नहीं दिया तो अब बड़ा भारी अपमान हो गया, नहीं नहीं, भिक्षु का क्या अपमान है, मान भिखारी। एक रामायण में वर्णन है कि क्या सेवक सुख चह मान भिखारी, कोई सेवक ये चाहे कि हम आराम से रहे, है सेवक तो सेवा तो करनी ही पड़ेगी, और भिखारी सोचे कि हमारा बहुत बड़ा सम्मान हो और भीख मांगने जाऊं तो सब आदमी प्रशंसा करे, हाँ ठीक है बैठिए, इसकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो भगवान हंस रहे थे और हंसते हुए बिल्कुल निकट उनसे कहे, ये बात भगवान ने गोपों के निकट कहे और उनकी उनका आशय था कि श्री बलराम जी न सुने, क्योंकि भगवान ने एक अद्भुत लीला करने जा रहे हैं। ब्राह्मण पत्नियों का भगवान से प्रेम था, वे इन्हें अपने पति के रूप में मानती थी, स्वीकार कर चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव था कि कोई भी युवती स्त्री इनको देखती थी जो दैहिक संबंध में नहीं होती थी तो इन्हें वो अपना पति मानने लगती थी। कौन नहीं मानेगी स्त्री वास्तव में भगवान को पति, वास्तविक पति तो वही है, जो तथाकथित पति हैं संसार में तो वे कब तक पति हैं, जब तक जीवात्मा उस देह में है, जीवात्मा है तब तक वो पति है, बाकी इसके बाद तो मृतक कहा जाता है। और जीवात्मा है क्या, वह श्री कृष्ण का एक अंश है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। तो पति के शरीर में श्री भगवान हैं, उनका ही एक अंश है और वो भी स्वयं परमात्मा रूप से निवास करते हैं, तो वास्तविक पति तो वही हुए, वास्तविक पति तो भगवान हुए। हरे कृष्णा, आप लोग परेशान मत होइए। तो किसी भी व्यक्ति में यदि कोई किसी का पिता है या माँ है या भाई है पति है कुछ भी है, तो वास्तव में तो श्री कृष्ण ही भाई हैं, चाहे पति हैं पिता हैं, क्योंकि उस शरीर में वे परमात्मा रूप से रह रहे, और वे न रहें और उनका अंश जीव न रहे तो यह शरीर मुर्दा कहा जाता है। मृतक शरीर किसी का पति नहीं है और किसी का भाई, किसी की माँ या किसी का कुछ भी नहीं है। तो अंततः विश्लेषण करके देखा जाए, विचार करके सब तरह से, तो श्री कृष्ण ही पति है। तो ऐसे श्री कृष्ण को कोई स्त्री अगर साक्षात पति मानने लगे तो वही ठीक स्तर पर है, ठीक रास्ते पर है, ठीक स्थिति में है। यद्यपि उन विप्र पत्नियों ने भगवान को कभी देखा नहीं था, लेकिन सुन करके ही अपना पूर्ण हृदय समर्पित कर दिया था भगवान को, वो आगे के प्रसंग से पता चलेगा। तो श्री भगवान धीरे से गोपों से बोले, उन्होंने कहा, माम ज्ञापयत पत्नी भ्या ससंकर्षण आगतम। यद्यपि भगवान धीरे से बोल रहे थे लेकिन श्री बलराम जी उस बात को सुने तो उन्होंने कहा, माम ज्ञापयत, ऐसा करो निराश मत हो, हंसते हुए कहते जाकर के केवल सूचना दे दो पत्नी भ्यो, पत्नियों से। भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि यज्ञस्य पत्नी भ्यो या विप्राणाम पत्नी भ्यो, ब्राह्मणों की पत्नियों से जाकर के कहो या यज्ञ पत्नियों से, भगवान ने यह नहीं कहा। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि भगवान मन में उनके भाव को स्वीकार कर रहे थे, जाकर पत्नियों से मुझे सूचित कर दो ये कह रहे हैं। अथवा श्री कृष्ण ने यह विचार किया कि ये उन ब्राह्मणों की पत्नी के योग्य नहीं है, वास्तव में ये पति के योग्य नहीं है ये लोग, इसीलिए भगवान ने विप्र पत्नी भ्यो नहीं कहा, केवल पत्नी भ्यो कहा, पत्नियों से जाकर के कह दो। क्या कह दो, केवल सूचना दे दो कि मैं आया हूं यहां, बस इतना ही काफी होगा। और भगवान एक भी बोले, ससंकर्षणम आगतम, भगवान अपने भाव को प्रेम को गोपन करते हुए छिपाते हुए बोल रहे हैं, कहना कि संकर्षण के साथ आए हैं, श्री बलराम के साथ आए। यह कहने की आवश्यकता नहीं थी, केवल इतना ही सूचित होता कि कृष्ण आए हैं तो वो प्रसाद लेकर के आती ही, इनके दर्शन के लिए वो आती ही, और इनके अनुगामियों को भी, सखाओं को भी पर्याप्त प्रसाद देती। भगवान उनके स्वभाव को जानते थे, एक तो परम ईश्वर है, परमात्मा है, सब जानते हैं, और भी बाहरी व्यवहार से उनके विषय में भगवान भी सुनते होंगे। तो कहे कि माम ज्ञापयत, माम में आगतम एव ज्ञापयत, न च बुभुक्षितम नापि अन्न याचनादिकम अपि कुरुत। ये मत कहना कि मैं भूखा हूं, और देखो जरा उनका प्रेम मेरे प्रति क्या है, ये मत बताना कि मैं भूखा हूं, और अन्न की याचना मत करना, मांगना मत कि हमको भोजन चाहिए, हमारी बुभुक्षा को भी मत बताना कि वे भूखे हैं। वे लोग जाने में हिचक रहे थे, इसलिए भगवान ने कहा कि अब कोई बात नहीं, तू केवल जाकर के सूचित करो, मांगना उंगना नहीं। माम ज्ञापयत, माम का अर्थ मतलब आगतम ज्ञापयत, मैं आ गया हूं, ये केवल विज्ञापन दे दो, ये बता दो उनको। न च बुभुक्षितम विज्ञापयत नापि अन्न याचनादिकम कुरुत, अन्न याचना भी मत। जतो मदा गमन ज्ञापना देवा दास्यन्ति इत्यर्थ, मैं यहां आया हूं, इतना सुनते ही वे सब प्रकार के प्रसाद तुम लोगों को देंगे। पत्नीभ्यः तेषां यज्ञस्य चेति न निर्दिष्टम्। पत्नीभ्यः कह रहे हैं भगवान, उनकी पत्नियां मतलब ब्राह्मणों की पत्नियां या यज्ञ पत्नियां, ये नहीं निर्देश कर रहे हैं। तेषां तासु तत्त्व संबंधा योग्यत्वात्, उन महान स्त्रियों के प्रति बोल रहे हैं कि उनके लिए ये पति योग्य नहीं थे, अयोग्य थे, इसलिए भगवान ने उनको उनका पत्नी नहीं कहा। तेषां तासु तत् संबंधा योग्यता, ये संबंध योग्य नहीं था उन ब्राह्मणों के, उनके इसीलिए केवल पत्नी ब्याह कहें। किंच स्वस्मिन तासाम भाव विशेषेण, अथवा उन विप्र पत्नियों का भगवान के प्रति एक भाव विशेष था। भाव विशेष का मतलब कि हमें श्री कृष्ण की दासी बने और इनके चरणों की सेवा करें, यह भाव वास्तव में पत्नी भाव ही था। तो भगवान उनके संबंध को जानते थे, उनके भाव को, इसलिए वे पत्नी भ्यह कह रहे हैं। तत्र श्री बलरामस्य गौरतया संकर्षण सहितम इति उक्तम। संकर्षण शब्द ने तासाम तस्मिन भक्त्यर्थम आत्मना सह तस्य पृथक भाव की सूचित। संकर्षण शब्द से उन ब्राह्मण स्त्रियों के भगवान श्री बलराम जी में, ये भगवान श्री कृष्ण में, श्री बलराम जी में आदर का भाव उत्पन्न करने के लिए अपने साथ अपृथक भाव सूचित कर रहे हैं। ससंकर्षण ननु पतिनाम अनुज्ञा बिना कथम तायपि दादु, यदि गोप कहें कि वे पतियों की अनुज्ञा अनुमति के बिना वे कैसे प्रसाद देंगी, तो भगवान कहते हैं, और इसके पहले पूछ रहे कि गोप पूछ रहे कि पतिनाम अनुज्ञा बिना कथम ताय अपि ददु कथंचित ददानाय अपि, यदि कभी देने के लिए तैयार हो जाती हैं तो वारई तब्या, उनको उनके पति रोकेंगे, नहीं देने देंगे, क्योंकि वे लोग हाय और ना कुछ नहीं बोले, और उनके सामने ही उनकी पत्नियां अगर देने लगेंगी तो सीधा विरोध करेंगे, बन गई हो तुम लोग महादानी, अब दान दान करने चली हो ऐसे, मान लीजिए रोग के निवारण करें, तब भगवान कहते हैं मई उषिता धिया, ऐसा नहीं होगा। मई उषिता, वो मुझ में ही निवास करती हैं, देह से केवल वो ब्राह्मणों के साथ रह रही हैं, यज्ञशाला में रह रही है, घर में रह रही है, लेकिन मन से बुद्धि से मुझ में ही निवास करती हैं। से भगवान कहते हैं मई ये व मन आधत स्व, तो उनका मन मुझ में है। उषिता का अर्थ है निवसिता, मद अपेक्षा तासन तेसु नादर। भगवान ये कहे कि मेरे प्रति उनका जितना प्रेम है, आदर है, उन ब्राह्मणों के प्रति उतना आदर नहीं है, अतः मेरा नाम सुनते ही वे प्रसाद देंगे। विशेषतश्च अधुना तेषां दुर्व्यवहारेण तान उपेक्ष्य देहेन अपि मयि समागमिष्यन्ति इति भाव। और विशेष करके इस समय जब उन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, ब्राह्मणों ने हमारे मांगने पर भी उन लोगों ने अन्न नहीं दिया है, इससे बहुत क्षुब्ध हैं, बहुत दुखी हैं। और इस कारण से अब तक तो वे बुद्धि से मेरे साथ थीं, लेकिन अब वो देह से भी मेरे पास आएंगी, उनके देह के साथ भी हमारा मिलन होगा, अर्थात वे हमारा दर्शन करेंगी, वो आएंगी यहाँ, जब ही सुनेंगी कि श्री कृष्ण आए हैं तो आएंगी। स्निग्धा, क्यों कि वे स्निग्ध हैं, स्निग्ध का अर्थ है प्रेमी, वे हमसे प्रेम करती हैं। जग पत्नी नाम मधुर रति युक्तत्वे अपि सामान्य तयुक्ति श्री रामादि लज्जात तासाम तस्मिन तादृश भावा प्रकाशनाथ। एक तो शब्द भगवान कह दे स्निग्ध, समान रूप से कि वे स्निग्ध है, स्निग्ध का अर्थ होता है स्नेहवती, वे स्नेह करती हैं। स्नेह का ऐसा स्वभाव है, घी को स्नेह कहते हैं या तेल को, तो वह बहता है, पीछे पीछे चलता है। तो भगवान एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि वो मेरे प्रति ही समर्पित हैं, मुझसे प्रेम करती हैं। श्री राम आदि की लज्जा से, श्री बलराम जी आदि गोपों की लज्जा से उन ब्राह्मण पत्नियों में भगवान अपने भाव को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, छिपा रहे, छिपा करके बोल रहे स्निग्धा। तो माम आगतम एव ज्ञापयत न तु बुभुक्षितम बुभुक्षा लक्षण मत दुख श्रवणस्य, मुझे मत बताना कि मैं भूखा हूं, नहीं तो हमारे इस बुभुक्षा लक्षण दुख को सुन करके वे तत्काल ही संतप्त हो जाएंगे, दुख से ग्रस्त हो जाएंगे, इसलिए मेरा दुख मत सुनाना। ननु तद बुभुक्षा ज्ञापनम बिना कथम अन्नम ता दास्यन्ति, गोप कहते हैं यदि हम लोग नहीं बताएंगे कि तुम भूखे हो तो कैसे अन्न देंगी, कैसे भोजन देंगी। तब भगवान कहते हैं मत संबंधे नहीं व जुस्मत बुभुक्षा दर्शने नहीं व दास्यन्ति, मेरे संबंध के कारण तुम लोग मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, तो तुम्हारी बुभुक्षा को देखते ही वे देंगे। ननु तत्पतयो वारयिष्यन्ति, गोप कहते हैं कि उनके पति रोकेंगे, तो भगवान कहते हैं मई स्निग्धा स्नेहवत्य पति वारणम न मानयिष्यन्ति इति भाव, कितना भी उनके पति रोकेंगे, मना करेंगे, वे नहीं मानेंगे। जब तो मई एव धिया उषिता केवलम देहेना एव पति गृह बसंती इति अर्थ, केवल देह से पति के घर में रह रही है, बाकी मन से वो मेरे पास ही रहते। ये श्रीमद् भागवतम है, इसमें यही दिखाया गया है कि किस व्यक्ति ने कितना प्रेम किया भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण पर संसार के सब लोग लट्टू थे, इसलिए तो उनका नाम कृष्ण है, सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। वे जाज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को देखा नहीं था, केवल कथा सुन करके और श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान चुकी थी। वो दूसरे की विवाहिता पत्नियां थी और वो भी उच्च कोटि के ब्राह्मणों की पत्नियां। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उच्च कुल में जन्म ले लिया तो कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकता है, कृष्ण सबके हैं। इस तरह कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में मानना चालू कर देना और उस दिन की प्रतीक्षा करना कि कौन ऐसा समय आएगा कि हम श्याम सुंदर को देखेंगे और उन्हीं के पास रह जाएंगे, ये मनोरथ था उनका। कथा सुन करके, देख करके क्या होगा, देखने के बाद तो साफ कहें कि नहीं हम नहीं जाएंगे घर, नहीं जाएंगे। लेकिन श्री भगवान मर्यादा के रक्षक हैं, वो देखे कि ये ब्राह्मणी है और मैं प्रकट लीला में एक गोप हूं, इनको अपने साथ रखना, इनके साथ विवाह का संबंध रखना या पत्नी भाव से रखना यह बिल्कुल लोक विरुद्ध है, मर्यादा के विरुद्ध है। तो भगवान ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। यद्यपि ब्राह्मणियों ने यह भी भगवान से कहा, तब तो हमारे जीवन में यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना कि हम ब्राह्मण हैं, यदि हम गोपी होती तो आप हमको स्वीकार करते। तो भगवान ने इस तरह से मर्यादा के रक्षक हैं। जो लोग श्री कृष्ण पर आरोप करते हैं कि श्री कृष्ण कामी हैं, उन लोगों को यह सब प्रसंग पढ़ करके देखना चाहिए। अभी अभी जो प्रसंग बीता और इसके बाद ब्राह्मण पत्नियों का, यदि श्री कृष्ण में रंच मात्र भी काम होता तो किसी न किसी तरह से इन ब्राह्मण पत्नियों को स्वीकार किए होते। लेकिन भगवान उनके प्रेम को स्वीकार करते हैं, उनके द्वारा दिए गए प्रसाद को भी स्वीकार किए, लेकिन कभी भी उनके साथ इस प्रकार के संबंध को स्वीकार नहीं किए। इस देह से वे भगवान की पत्नियां नहीं हो सकती थी, लेकिन उनका भाव बना रहा। तो भगवान इस तरह से बोल रहे हैं कि वो निश्चित प्रसाद देंगे कि वो बहुत प्रेमी हैं, हमसे बहुत प्रेम करती हैं। तो किसी तरह से वे गोप आश्वस्त हुए और फिर उसी स्थान पर गए जहां से उनको इतना ठोकर लगा था, ब्राह्मण दिए नहीं थे। तो उनके अब यज्ञ मंडप में नहीं गए, यज्ञ मंडप के पास ही पत्नीशाला थी, पत्नीशाला जहां ब्राह्मणों की पत्नियां रहती थी, तो उनके लिए भोजन बनाना और सब करना, कपड़ा साफ करना, घर द्वार बहार करके रखना, ये सब काम करते थे। जिस समय गोपाल लोग पहुंचे वहां, तो स्त्रियां पतियों के लिए भोजन बना चुकी थीं और देवताओं के लिए भी कुछ भोजन बनाए थे। बहुत अच्छा भोजन उस दिन संजोग से बनाए थे और बना करके अब हाथ पैर धो करके और बैठी थी। जब पहुंचे तो बैठी थी और कृष्ण कथा ही कर रही थी आपस में। कथा का मतलब है बात, श्री कृष्ण के विषय में बात कर रही थी परस्पर जो सुनी थी। गत्वाथ पत्नीशालायां दृष्ट्वा सीना स्वलं कृतः नत्वा द्विशतिर्गोपाः प्रसृता इदम् अब्रुवन्। अथ स्निग्धा इत्यादि श्री भगवत वचनानंतरों में जब भगवान ने कहा कि वो स्निग्ध हैं, स्नेहवती हैं, अन्यथा पुनर्याचनार्थम जानम अयुक्तम स्यात्, यदि वे भगवान ये नहीं कहे होते तो ये गोप गए नहीं होते। तो अथ का अर्थ है भगवान की बात सुनते ही तैयार हो गए जाने की। गोप पत्नी शालायाम गत्वा, ब्राह्मणों की दृष्टि बचा करके ही गए। वो लोग तो यज्ञ में बैठे थे, हवन कर रहे थे, उधर से वो लोग देखे, वो लोग देखे कि फिर ये आए इधर। लेकिन पीछे पीछे यज्ञशाला में गए और पत्नीशाला में, तो उन्होंने देखा कैसी है वे, सुअलंकृता, अच्छा श्रृंगार करके थे, वे सधवा स्त्रियां थी, और जो सधवा स्त्री का व्यवहार होना चाहिए, सौभाग्यवती स्त्री का, वो सारा व्यवहार करती थी। तो शरीर का श्रृंगार की थी, अच्छा वस्त्र पहनी थी, अलंकार पहनी थी, और आसीना पति पार्वस्य न आवश्यकम पाकादि वयग्रम उत्तीर्ज स्नान आदि पूर्वकम परस्पर भगवत कथा वेशे न निश्चलतया कृतोपवेशा इत्यर्थ। अरे पत्नियां पति के वश में है, इसलिए उनके लिए आवश्यक पाक आदि वयग्र से उत्तीर्ण हो गई थी। पहले पाक आदि करने में सब जुटाने व्यग्र थी, लेकिन अब उसको पार करके और स्नान आदि करके श्रृंगार करके और परस्पर भगवत कथा के आवेश में निश्चलतया बैठी थी। उन ब्राह्मणों जैसे व्यग्र नहीं थी, स्वाहा हा हा और धुआं खाना ये करना, वो व्यग्र नहीं थी। ये तो आनंद से भगवत कथा कृष्ण कथा में लगी हुई थी, आपस में भगवान की बात कर रही थी, वो लोग वेद मंत्र पढ़ रहे थे। देखिए उनकी स्थिति, अब ये श्लोक ये श्लोक, ये ऋचा ये ऋचा, ये हवन, वहां चार चार बैठे रहते हैं ऋत्विज, ऋत्विज लोग बैठे रहते हैं, एक आग को ठीक करता रहता है, उसमें कभी कभी लकड़ी डालना और चारों ओर से समाहित रखना, और एक होते हैं सामान जुटाने वाले, घी जुटाना और सब जुटाना ये करना, और एक हवन करने वाले होते हैं और एक मंत्र पढ़ने वाले, चातुर होत्र कहते ही है उसको, चार लोग मिल करके हवन करते। तो ऐसे लगता है कई कुंड होगा, चाहे मान लीजिए एक ही कुंड होगा, फिर भी वह सब ब्राह्मण उसमें व्यग्र थे और कृष्ण कथा का आनंद ले रही थी उनकी पत्नियां, भगवान की बात कर रही थी, उनका मन इतना आकृष्ट था कि श्री कृष्ण के ही विषय में बात कर रहे थे। एक गए द्विज सती ही, एक तो परम पवित्र ब्राह्मण वंश, और उसमें भी ब्राह्मण जाति में भी ये सती भगवत भक्त्या जाते न सर्व गुणोदय न परम सद्व्यवहार युक्ता च। यहां सती शब्द का अर्थ है भगवान की भक्ति से भगवान के सारे गुण इनमें आ गए थे, तो परम सद्व्यवहार से युक्त थे सत्य। द्विज सती ब्राह्मणों की गुणवती स्त्रियां, तो इनको देख करके गोप जब गए तो देखे, देखते ही इन पर प्रभाव पड़ गया कि श्री कृष्ण जो कहे ठीक कहे, कि ये दूसरी है, ये मतलब उन ब्राह्मणों जैसे नहीं है। तो प्रसृता स्वभाव से ही वे नम्र हैं गोप लोग, अथवा श्री कृष्ण विषयक स्नेह को सुन करके कि ये स्त्रियां बहुत कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो इसलिए और नम्र हो गए, और नत्वा प्रणामम कृत्वा प्रणाम किए, और इदम अब्रुवन प्रणाम करके यह बात बोले, गए प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम नहीं किए, क्योंकि स्त्रियां हैं कुछ भी है तो ऐसा नहीं कि सबको दंडवत जहां तहां करते रहे। तो ये गोप गए स्त्रियों को प्रणाम किए, दंडवत नहीं किए, इतना समझना चाहिए, प्रणाम किए। तो प्रश्न उठता है कि अरे भाई स्त्री को क्यों प्रणाम किए? द्विज सती ये पवित्र ब्राह्मणों की पत्नियां हैं और भगवान की प्रेमिकाएं हैं, इसलिए प्रणाम किए भगवान के संबंध से। अथ श्री भगवत वचनानंतरमेव आसीना इति न पतिवत कर्म व्यग्रह। ये बैठी थी, आसीन थी, पतियों के समान कर्म व्यग्र नहीं थी, ये करो वो करो ये करो, हमेशा काम धंधा में ही जो व्यक्ति फंसा रहता है, ये करो ये जुटाओ ये जुटाओ, क्या भगवान से प्रेम करेगा? भगवान से प्रेम करने के लिए उनके विषय में सुनना चाहिए, और सुनेगा वही जो व्यग्र नहीं होगा, है ना, शांत होगा। तो पतियों के समान व्यग्र नहीं थे, किंतु श्री भगवत भक्ते सुखे न सुस्त चय वर्तमाना, कृष्ण भक्ति के सुख से बहुत अच्छी तरह से थी वहां। स्वलंकृता इति तासम जग पत्नी तो लक्षणम सूचितम, सुअलंकृत थी। एक प्रकार से स्त्री के रहन सहन को भी सुखदेव के समय व्यक्त करते हैं कि उसको सुअलंकृत रहना चाहिए, ठीक से केश का संस्कार करके और सब चीज साफ सुथरा रहना चाहिए। स्वलंकृता इति तासाम जग पत्नी तो लक्षणम सूचितम, जदवा भगवन मुद्रादि सलक्षणम, भगवन मुद्रादि सदलक्षणम सूचितम, भगवन मुद्रादि सलक्षणम। या ये कहीं से मथुरा जी से या कहीं से श्री कृष्ण का जिस पर चित्र है ऐसी मुद्रिका भी पहनी थी, मुंदरी पहनी थी इत्यादि। द्विजानाम विप्राणाम तेषाम सती पत्नी, सती शब्देन तेषाम पत्नीत्वे पी आसम साध्वित्वम एव सूचितम। उनकी पत्नियां हैं फिर भी ये कृष्ण से प्रेम करती हैं, तथापि सुखदेव गोस्वामी उनको सती कह रहे हैं। वास्तविक सती यही है जो श्री कृष्ण से प्रेम कर रही है। भगवत भक्त क्यों द्विजेभ्यो पी तेभ्य सर्वथा साध्वी रीति, अथवा द्विज सती का अर्थ है द्विजों से भी अधिक श्रेष्ठा साध्वी द्विज सती। ते विनीत होकर के जाकर कृष्ण के कहने से कृष्ण के आज्ञा के अनुसार गए, प्रणाम किए, प्रणाम कर केवल इतना ही कहना था कि कृष्ण आए हैं, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक करके पीता है। और ये लोग पहले से रास्ते भर सोचते गए कि ये कहना है, कृष्ण के कहने से क्या होगा, कुछ कहेंगे तब देंगी, आपस में ये विचार कर रहे थे कि वे लोग उतना देर हम लोग मांगे नहीं दिए तो इनसे तो कुछ तो कहना च पड़ेगा ना। नमो वो विप्रपत्नी भ्यो, जा करके प्रणाम करके कहते हैं विप्रपत्नी भ्यो वह जुष्मभ्यो नमः अस्तु इति शेष। हे ब्राह्मण पत्नियों, आपको हमारा नमस्कार है। निबोधत वचांसि न, वे आपस में चूंकि कृष्ण का गीत गा रही थी, कृष्ण के सौंदर्य का लीला का आपस में, तो ध्यान नहीं दे रही थी, इसीलिए कहते निबोधत हमारे वचांसि वचन को, नितराम बोधत सुनो, समझो, जरा समझने का प्रयास करो हम जो बोल रहे हैं। बचान न बचांसी अस्माकम बचांसी निबोधत, जब इस तरह से कहा तो उन्होंने ध्यान दिया। सब देखा इतो अविदुरे चरता, चरता विचरण करते हुए, घूमते हुए अथवा गाय चराते हुए, यहां से निकट ही आए हुए कृष्ण के द्वारा हम लोग ईशिता भेजे गए हैं। इतना सुनते ही कृष्ण शब्द सुनते ही वे भाव विह्वल हो गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि बिल्कुल भाव में विह्वल हो गए, फिर बाहरी अनुसंधान नहीं रहा। तब गोपो ने सोचा कृष्ण का नाम इन लोगों ने सुना और कहीं बिना भोजन वोजन लिए ही कृष्ण को देखने के लिए न चल दे भाई इतना प्रेम है कृष्ण से इसलिए भोजन की सूचना दे रहे हैं। अथवा इन्होंने सोचा कि कुछ भी है, आखिर उन्हीं लोगों की पत्नियां हैं तो पूरा पूरा कह देना चाहिए, तब देंगे, नहीं तो हो सकता है न दें। बस इतना ही काफी हो गया, इतना ही विज्ञापन करना था, कृष्ण यहां निकट में आए हैं, इतना ही काफी था। लेकिन ये गोप क्या कह रहे हैं, कृष्ण ने हमको भेजा है, ये नहीं कहना था। भगवान ने ये नहीं कहा था माम ज्ञापयत, इतना ही कहा था मेरा विज्ञापन करो कि कृष्ण आए हैं, लेकिन ये लोग माने नहीं, कहे कि यहाँ कृष्ण आए हैं निकट में ही और उनके द्वारा वयम इह ईशिता यहाँ भेजे गए, उन्होंने हम लोगों को भेजा है यहाँ पर। गाह चारयन स गोपालय सरामो दूर मागत, भगवान ने इतना ही कहा था कि ये कहना कि संकर्षण के साथ आए हैं तो सरामो, ये तो ठीक कह रहे हैं राम के सहित, गोपालों के साथ सह श्याम सुंदर श्री कृष्ण गाह चारयन सरामो दूर मागत, गोपालों के साथ और राम के साथ, ये गोपालों को बहुवचन में बोल रहे हैं और राम को, इसका मतलब कि संख्या गिना रहे हैं। इतना श्री कृष्ण आए हैं तो एक तो श्री बलराम जी हैं उनके साथ और उनके बहुत से मित्र हैं गोपाल, तो बुभुक्षितस्य और वे भूखे हैं, ये सब बहुत ऊपर से कहने लगे। बुभुक्षितस्य बुभुक्षितस्य तस्यानम सानुगस्य प्रदीयतम, मांग ही दिए, ये कहे कि वे सानुग भूखे अपने अनुगामियों के साथ, मतलब श्री बलराम जी या गोपों के साथ वे भूखे हैं, और आपसे यही प्रार्थना है कि अन्नम प्रदीयतम सबके लिए, उनके साथियों के लिए, श्री बलराम जी के लिए, कृष्ण के लिए, सबके लिए अन्नम प्रदीयतम। ये बेचारे ओदन मात्र नहीं कहे, यहां कुछ साहस हो गया था, अन्न का यह अर्थ है बहुत प्रकार का पकवान, अन्न अन्न कह रहे, ओदन नहीं कह रहे, तो ओदन क्यों नहीं कहे। हरीश्वर जी कहते हैं कि ये जानते थे कि ये स्त्री हैं इसलिए प्रणव में इनका अधिकार नहीं है, ओम जिसे ओ द न में कहा गया था ना ओंकार और द द और न, तो नेति, तो वो कहते हैं कि ये जानते हैं कि ये स्त्रियां हैं अतः ओंकार जपने का इनका अधिकार नहीं है, अतः ओदन नहीं कहीं अन्न कहीं, और अन्न इस अन्न कहे लोग, और अन्न इसलिए कहे कि श्री कृष्ण के इनके प्रेम की बखान करने से इनको विश्वास हो गया था कि ये लोग बहुत प्रकार का आचार देंगे, और इसीलिए दिया भी अन्न कहने से, चतुर विधम सुखदेव गोस्वामी कहे हैं, चर्व्य चोष्य लेह और पेय, कई प्रकार की लस्सी बना करके पेय और लेह चटनी, लेहन चटनी और चटनी, और पेय में खीर भी पेय ही है, तो कई प्रकार के प्रसाद लेकर के चली थी। अहो हंत एता कृष्ण नामना एवं आनंद मूर्छिता अभुवन, बात ये थी कि असली कि जब उन्होंने कहा कि कृष्ण आए हैं यहाँ पर और उनके द्वारा हम भेजे गए हैं, तो ये सुनते ही वे आनंद से बेहोश हो गई, बेहोश हो गई कि प्रीतम श्याम सुंदर यहाँ आए हैं, अब आनंद की बाढ़ है आ गई शरीर में, इसलिए शरीर शिथिल हो गया। तो इन गोपों ने देखा कि कृष्ण के नाम से ही आनंद से मूर्छित हो रही हैं, अतः तद इम प्रबोधयितु तद वृतांतम उक्तम एवं तम किंचित विशिष्य पुनर्उच्च उच्चारयाम इत्या। तो उन गोपों ने सोचा कि अरे तो कृष्ण के नाम से ही मूर्छित हो रही आनंद मूर्छित, तो इनको जगाने के लिए श्री कृष्ण का वृतांत तो हम कह ही चुके हैं, लेकिन अब कुछ उच्च स्वर से इनको कहना चाहिए, किंचित विशेष पुनः उच्च उच्चारयाम, ऊंचा उच्चारण करें। तो ये बोलते हैं गोपालय सराम गोपै सह सराम गोपै सह रामेण सहित सह कृष्ण, अब नाम नहीं ले रहेंगे, अगर पुनः कृष्ण नाम लेंगे तो ये इनकी आनंद मूर्छा और बढ़ जाएगी, ये भाव है, इसलिए सह कह रहे हैं, सह श्री कृष्ण गोपै सह रामेण सह गाह चारयन सन दूरम आगत, ब्रजात दूरम आगत, अपने घर से बहुत दूर आ गए हैं, यहाँ निकट आ गए हैं। अधुना बुभुक्षितस्य भोक्तुम इच्छत, और इस समय उनको भूख लगी है, वे खाना चाहते हैं। तो सानुगस्य श्री राम और गोप वर्ग सहितस्य तस्य श्री कृष्णस्य अन्नम प्रदीयताम, प्रदीयताम इसका मतलब है कि सरस मिष्टान पान भृत पात्रादि द्वारा दीयताम, उनके लिए अन्न प्रदान कीजिए। प्रदीयताम कहते बहुत सरस मिठाई या पीने के लिए लस्सी यदि जो भी है एक पात्र में भर भर कर पात्र सहित दीजिए, दीयताम। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी टीका लिखते हैं, सदा कृष्णम रमयति इति राम, सदा श्री कृष्ण को जो रमाते हैं सुखी करते हैं उनका नाम है राम, श्री बलराम जी के लिए। सदा कृष्णम रमयति इति राम इति तस्मात संकोचो निरस्त, अतः बलराम से संकोच की जरूरत नहीं है, तो सदा श्री कृष्ण को सुखी करते रहते हैं। स राम आए हैं तो एक प्रकार से संकोच होगा ना कि बड़े भाई साथ में हैं तो हो सकता है जाने में संकोच करें, अतः राम शब्द से उनको व्यवहित कर रहे हैं कि सदा कृष्णम रमयति इति राम, कृष्ण को सुखी करते हैं तो इसलिए उनसे संकोच की आवश्यकता नहीं है। दूरम गृहादिति, दूर आए हैं विदूर, तो इसका अर्थ है घर से दूर आए हैं। दूरम गृहात इति ततो अन्नम आनेतुम न शक्यता इति भाव, और इसलिए अब घर से अन्न नहीं लाया जा सकता है, भोजन नहीं लाया जा सकता है, दूर आए तो वहां जा करके यदि मान लीजिए ये पूछे तो घर से भोजन नहीं ला सकते, ऐसा थोड़े पूछने वाली थी, लेकिन लोग स्वयं ही शंका करके कहते हैं कि घर दूर हो गया है वहां से अन्न नहीं लाया जा सकता है, भोजन नहीं लाया जा सकता, अथवा अदूरम इतः पुनरुक्ति, अथवा अदूर कहेंगे तो ये पुनः उक्ति है निकट में यहीं पर आ गए हैं। अति नैकट्ये न तासाम आगमनार्थम, इसलिए बोल रहे हैं अति निकट आ गए हैं कि ये लोग जाएंगे कृष्ण के पास। सानुगस्य श्रीराम गोप वर्ग सहितस्य अप्रकर्षेण सरस मिष्टान पान भृत पात्रादि द्वारा दीयताम, पूर्वम केवलम तयोरेव अन्न प्रार्थनो, इसके पहले ब्राह्मणों से यही गोप लोग केवल कृष्ण बलराम के लिए अन्न प्रार्थना किए थे कि दोनों भूखे हैं दोनों को प्रसाद दे दीजिए। अधुना इस समय च सानुगस्य तत्रापि प्रकर्षेण इति तासाम श्री भगवती भक्ति विशेष श्रवणात्, श्री भगवत जो भगवान के मुख से गोपों ने सुना कि ये इनकी ये भक्त हैं श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण का भक्त है प्रेमी है, तो इसलिए अब सबके लिए कहने का साहस हुआ। सानुगस्य अनुगामियों के साथ सखाओं के साथ वे आए हैं के लिए प्रसाद दीजिए। एक प्रश्न उठता है, श्री भगवद अनादिष्टम अपि अन्न याचनम, भगवान ने आदेश नहीं दिया था कि मांगना अन्न, ये चाहते भी नहीं थे मांगना, लेकिन भगवान नहीं कहे मांगने के लिए फिर भी क्यों मांग रहे हैं। श्री भगवद अनादिष्टम अपि अन्न याचनम निज क्षुधार्त्या अनुगा नामपि भक्ष प्राप्ति अर्थे वा, तो इन लोगों ने सोचा कि ऐसा न हो कि केवल अकेले कृष्ण को खिलाने के लिए अन्न लेकर के चल दे, तो इसलिए सूचित कर देना चाहिए कि नहीं जमात बहुत बड़ा है तो अपने भूख की आरती से अपने अनुगामियों के लिए भक्ष, अपने साथियों के लिए भक्ष प्राप्ति अर्थ, न श्री कृष्ण के अनुगामियों के लिए भक्ष द्रव्य प्राप्ति के लिए अनलब्ध्यर्थम वा, अथवा ये सोच करके ये लोग बोल दिए कि ऐसे कल बोलने से काम नहीं चलेगा, कृष्ण आए हैं, इतनी इच्छा थी अन्न भोजन प्राप्ति की कि उसके लिए उन्होंने कह दिया भूखे हैं। अन्यथा तद आगमन श्रवण मात्रेण त्वरया अन्न परित्यागे न अपि आगमन संभव। अथवा गोपो ने यह सोचा कि कृष्ण के प्रेम में विभोर होकर के उनके आगमन के श्रवण मात्र से जल्दी जल्दी में भोजन आदि पर ध्यान न देकर के चल देंगे कृष्ण से मिलने के लिए, इसीलिए याद दिला रहे कि वो भूखे हैं और उनके साथी भी सब भूखे हैं, जिसे भोजन के साथ जाएंगे। अदूरम निकटम में वह आया था तदपि सम्यक प्रबुद्धा अलक्ष्य तस्यान कंसा श्रावित्य अति स्नेहवती तह बिहवलया मास। श्री कृष्ण की भूख बता करके गोपों ने उन ब्राह्मण पत्नियों को और बिहवल कर दिया, उत्कंठित कर दिया। तो जब द्विज पत्नियों ने सुना कि प्रियतम श्री कृष्ण आए हैं, तब क्या हुआ, श्रुत्वा चित्तमुपायातम नित्यम तद्दर्शनोत्सुकः तत्कथा क्षिप्त मनसो बभूवुर्जात संभ्रम। पूर्वमेव पहले से ही ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान कृष्ण की कथा को सुन करके अक्षिप्त मन वाली हो गई थी, उनका मन श्री कृष्ण ने पकड़ लिया था। वो केवल देह से अपने घर में अपने पतियों के साथ रहती थी, लेकिन मन से वे निरंतर श्री कृष्ण के साथ थी। तत्कथा क्षिप्त मन सह तस्य कृष्णस्य कथया लीलादि रूपया वार्तया आक्षिप्तानि आहृतानि मनांसी जासाम ता। भगवान की बातें सुनकर के, भगवान के लीला गुण आदि की कथाएं सुनकर के, वार्ता सुनकर के इनका मन पहले से ही हर लिया गया था श्री कृष्ण के द्वारा। किंवा तस्य कृष्णस्य कथया, अथवा कृष्ण की बुभुक्षा वार्ता को सुन करके इनका मन आक्षिप्त हो गया और कहने लगी, अरे पामर मन, कथम प्रियतमस्य बुभुक्षा श्रवणेन अपि न मूर्छा तो जागर से धिक त्वमिति। और जब मूर्छा आ रही थी, आनंद की मूर्छा, दुख की मूर्छा नहीं, आनंद की मूर्छा, तब ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं, अरे पामर मन, अरे नीच मन, तुम्हें सुन करके भी कि प्रीतम से हम सुंदर भूखे हैं और फिर भी तुम मूर्छा से नहीं जग रहे हो, तुम्हें धिक्कार है, यह कह करके तुरंत तैयार हो गई। तिरस्कृतानी स्व मनांसी जा भी, आक्षिप्त का अर्थ तिरस्कार करना, आक्षेप करना, तो अपने मन को आक्षिप्त कर की चक्रवर्ती कर जाती। अतएव नित्यं तद्दर्शनोत्सुकः, भगवान की कथाओं से इनका मन कृष्ण के द्वारा हर लिया गया था, अतः नित्य ही तद्दर्शनोत्सुकः, श्री कृष्ण को देखने की लालसा से उत्सुक रहते थे। उत्सुक का अर्थ होता है हमेशा देखते रहना, हमेशा विचार करते रहना, कब उसी विचार में कब हम एक लक्ष्य प्राप्त करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उत्सुकता कहते हैं। उत्सुकता में व्यक्ति स्थिर नहीं बैठ पाता है और किसी काम में मन नहीं लगता है। तद दर्शनोत्सुका, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक थी, तत्पर थी। द्विज पत्नियों ने तदा उस समय जब सुना, अच्युतम उपायातम, अच्युतम हृदयात कदाचिदपि न च्युत भवति इति अच्युत। जो यज्ञ पत्नियों के हृदय से कभी भी च्युत नहीं होते थे, कभी दूर नहीं होते थे, वे अच्युत उप आयातम समीपे व साक्षात आयातम वे निकट आए हैं, ये श्रुत्वा जात संभ्रम बभूव। जात संभ्रम, जातोत्सव बभूव, उनके शरीर में मन में उत्सव छा गया, व्यग्रता छा गई। विशेषतश्च तत् कथया तद बुभुक्षा वार्तया वा अक्षिप्त मनस, तत्कथाक्षिप्त मनस्त्वा तद दर्शनोत्सुका। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, उनकी कथाएं सुनकर के, उनकी बातें सुनकर के दर्शन के लिए उत्कंठित रहते थे। यही है कथा का प्रभाव, भगवान के बारे में सुन करके और उनको देखने के लिए उत्कंठित रहते थे। उनका घर में मन नहीं लगता था, वो तो केवल व्यवहार में और शरीर के स्वभाव बस वो अपने पतियों की सेवा करती थी या घर का काम करती थी, लेकिन उनका मन पूर्णतः श्री कृष्ण के पास था। तो बहुत एकाएक विह्वल हो गई, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उनके शरीर और मन में उत्सव छा गया। तो चतुर्विधम बहुगुणम अन्नमादाय भाजन ही अभिश्रु प्रियम सर्वा समुद्र इव निम्नगः निषिध्यमान पतिभि पितृभिर्भ्रातृ बंधुभि भगवत उत्तम श्लोके दीर्घ श्रुत धृताशय। निम्नगः, निम्न का अर्थ है नीचे, जैसे नदियां हमेशा अपने से नीचे की ओर जाती हैं। निम्नगः, निम्नगः का अर्थ है नदियां। ने देखा है ना, नदी कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ती है, तो उतरती है। तब निम्नगः का अर्थ है कि नीच भूमि की तरफ बहने वाली, मतलब नदियां। जैसे नदियां समुद्रमिव समुद्र के तरफ जाती हैं वेग से, नद्यः यथा समुद्रम प्रति अप्रतिबंधा सत्यः अभिश्रवंती, उन पर प्रतिबंध भी डाला जाए, कोई पत्थर डालिए नदी में या कुछ अवरोध करने वाली वस्तु, फिर भी नदी की धारा उसको बहाती हुई ढकलती हुई चली जाती है, मिट्टी को गीला करती हुई बहुत जोर से जाती है। और नदी में अगर कोई हल्का अवरोध पड़े तो उस अवरोध को भी बहा करके ले जाती है। तो इस तरह से जैसे नदियां समुद्र के तरफ बढ़ती हैं वेग से, उस तरह से ये सुनते हैं कि श्री कृष्ण आए हैं, वो ब्राह्मणों की पत्नियां बड़े वेग से चली कृष्ण के तरफ। और वैसे प्रसाद लेने के बाद का वर्णन है, उत्तम श्लोक है, उत्तम जसह सालिनी श्री भगवती दीर्घ श्रुत धृताशय। इसका क्या कारण था, कैसे उनके चित्त में भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हो गया था, क्योंकि दीर्घ श्रुत धृताशय, दीर्घम बहुकालम श्रुतेन श्रवणेन धृत आशयो जाभिता। उत्तम श्लोक में उन्होंने अपने चित्त को रख दिया था, धृत का अर्थ है रख देना, अथवा उत्तम श्लोक नहीं पकड़ लिया था उनके चित्त को। तो कैसे इन्होंने अपने चित्त को श्री कृष्ण में पूर्ण रख दिया था, दीर्घ श्रुत धृताशय, दीर्घ काल तक बारंबार श्री कृष्ण के विषय में इन लोगों ने श्रवण किया था, और उस श्रवण से ही इनका चित्त श्री कृष्ण के द्वारा हर लिया गया था, लग गया था, ये आशय। देखिए, और भक्तों के विषय में कहा जाता है कि वे भगवान को देखे तो आसक्त हो गए, और किसी किसी भक्त के लिए कहा गया है सुना और बस आसक्त हो गए, जैसे रुक्मिणी जी। श्री गोपी जन कहती हैं, विक्ष्यालकावृत मुखम तव कुंडल श्री, आपके कुंडल श्री और स्निग्ध अलकावली से युक्त मुख को जब से हमने देखा, और आपकी विशाल भुजा को, आपके चौड़े वक्षस्थल को हम लोगों ने देखा, उसी समय से हम आपकी दासी हो गई। साक्षात श्री कृष्ण को देख करके दासी हो गई, और यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं कि ब्राह्मण पत्नियों के विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन लोगों ने दीर्घ काल तक श्रवण किया था। दीर्घ श्रुत धृता से दीर्घम बहुकालम श्रुतेन श्रवणेन धृत आशयो जाभिता सर्वा द्विजपत्न्य पति भी पितृ भी भ्रातृबंधु भी निषिद्ध माना। इनके पतिगण पितृगण मतलब ससुर आदि भ्रातृगण भ्रातृबंधु भी ये सब रोक रहे थे, भाई रोक रहे थे। भाई से तात्पर्य यहां है ब्रदर इन ला, कानूनी भाई, देवर आदि रोक रहे थे। ये तात्पर्य है। या कोई कोई अपने माता पिता के घर पर थे तो भाई रोक रहे थे, सब रोक रहे थे। बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है, पति रोक रहे थे, भाई रोक रहे थे, बंधु रोक रहे थे, निषिद्ध माना रोक रहे थे। फिर भी तस्मय कृष्णाय देयम चेद अन्नम प्रस्थाप्यताम स्वयं तो मां जाता। वे लोग कह रहे थे अगर श्री कृष्ण को अन्न देना है तो हम भेज देते, हम ठीक है ले जाते हैं, हम भेजवा देंगे सेवकों द्वारा, लेकिन तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। पति रोक रहे थे, भाई रोक रहे थे, ससुर आदि रोक रहे थे। जब ये लोग तैयारी करके कुछ प्रसाद बना करके तत्काल में और कुछ बना हुआ और जब लेकर के तैयार हुई घर से निकली, तब तक ये ब्राह्मण सब जग कर रहे थे, वे भी उठ करके आ गए। और उनके स्वजन आदि ये क्यों जा रही हैं, ये पता लगा कि श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं। सब लोग रुकने लगे, मत जाओ मत जाओ। कोई अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए, कोई अपने लड़की की इज्जत बचाने के लिए, और पति अपने पत्नी के स्नेह बस वे रोक रहे थे। वे कहते हैं कि तस्मय कृष्णाय देयम चेत, यदि श्री कृष्ण को देना है अन्न देना है तो अन्नम प्रस्थाप्यताम, ये भेज दिया जाएगा अन्न, भोजन भेज दिया जाएगा। स्वयं तुम मां जाता, तुम मत जाओ। कोई बांह पकड़ा था, कोई घर बंद कर रहा था, कोई दो चार दस दस व्यक्ति एक एक स्त्री को पकड़ने के लिए लगे थे, लेकिन निषिद्ध माना अपि नहीं रुकी, कृष्ण के पास चले ही गई। जैसे नदी की धारा बरसात के दिन में चले समुद्र की तरफ तो दो चार हजार आदमी भी क्या हाथ से रोक देंगे उसको, बल्कि वही उसमें बहा दिए जाएंगे। ऐसे उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। देखिए भगवान कृष्ण का आकर्षण, सुने गए हैं वे, देखा नहीं है और इतना सुन लिया कि वे यहां आए हैं तो उनको देखने के लिए सारे लोक बंधन धर्म मर्यादा आदि को तोड़ करके चली श्री कृष्ण को देखने के लिए। कौन कौन कैसे रोक रहे हैं इसका वर्णन करेंगे। निषिद्ध माना अपि भाजन ही बर्तनों में चतुर्विधम भक्ष भोज्य लेह चोष्य भेद ही चतुर्विधम बहुगुणम संस्कार विशेष है बहवो गुण सरसता सौगंध आदि सुगंधित सरस स्वादिष्ट पदार्थ लेकर के इसको कहते बहुगुणम। अन्नम आदाय गृहीत्वा प्रियम अभिशश्रु अपने प्रिय श्री कृष्ण के तरफ चली, बहुत वेग से चली। उदाहरण नदी का है और नदी से भी बरसाती नदी समझिए, बरसात में जैसे नदी में पानी भर जाता है और जितना वेग से चलती है, ऐसे वे ब्राह्मण पत्नियां चली भगवान के पास। भाजन ही कार से भोजन पात्र ही पाक पात्र ही वा, भोजन पात्र का मतलब है थाली में लेकर के चली अथवा बर्तन ही उठा उठा करके चली, क्योंकि बहुत लोग थे। भगवान के मित्र और श्री बलराम जी और भगवान ये सब थे, तो भोजन पात्र ही का अर्थ है, भाजन का अर्थ है भोजन पात्र के साथ, भोजन पात्र भी लेकर के चली। उन ऐसे चली थी कि वो बड़े बड़े बर्तन में, बांस के बर्तन में हल्का ओड़ी जिसको कहते हैं, ओड़ी में पाक पात्र भी सजा ली। पाक किसी बटलोही में कोई चीज बना था उसको ले ली और भोजन करने के लिए थालियां भी ले ली, कटोरी गिलास ये सब था, सजा करके रख ली। पाक पात्र वा कृत्वा सहितम इति वा अभिशश्रु इत्यादि ना तसम श्रीकृष्ण भाव विशेष
श्लेषण उक्ता,
पहले पतियों ने रोका, इसीलिए पति शब्द का प्रयोग पहले है। निषिद्ध माना पति भी, पति भी तासाम तद्वश्यत्वात्, पत्नी पति के वश में रहती है, इसलिए सबसे पहले पतियों ने रोका। तेषां वचो अनादरेण, जब उनके वचन का अनादर करके चली, पतियों के वचन का अनादर करके, वे कहे कि नहीं जाना है, तुमको नहीं जाना है, तुम मेरी हो, तुम कहां जा रही हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी की नहीं हूं, मैं कृष्ण की हूं। इस तरह से कह करके वो हाथ छुड़ा करके भाग रही है। पति ने देखा कि हमारे वचन की अवहेलना करके जा रही है, तो त्याज्यत्व संकया, तो पति ने कहा, उनके पतियों ने कहा ठीक है, जाना है तो जाओ, कृष्ण के पास ही रह जाना, अब हम तुम्हें नहीं रखेंगे, इस तरह से बोल रहे हैं। तो जब इस प्रकार से त्याज्यत्व की शंका से, तब पितृ भी ससुर समझाने लगे, और ससुर लोग रुकते हैं। इसके बाद ऐसे किस परिस्थिति में कौन रुक रहा है, इसकी टीका में श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि पतियों ने रोका, इसके बाद पिताओं ने रोका, तत्प्यधिक स्निग्धत्वा भ्रातृ भी, इसके बाद भाइयों ने रोका, भाई का स्नेह होता है अपनी बहन के प्रति, कि लोक में इसकी बेइज्जती होगी, असम्मान होगा, यह उल्टा स्त्री के रूप में जानी जाएगी, हाय हाय, इस आशंका से रोकने लगे, मत जाओ कृष्ण के पास। लेकिन वे नहीं रुकी, पिताओं के रोकने पर भी, भाइयों के रोकने पर भी, और बंधु भैया, भाइयों से भी अधिक स्नेह पुत्र का होता है, तो पुत्रों के द्वारा भी रोकी गई। पुत्र से तात्पर्य है अपने सहेली के पुत्र या अपने और दूसरे पुत्र, इनके पुत्र नहीं थे, ये नित्य किशोरी हैं, अरे भगवान की प्रियाएं हैं वास्तव में, तो केवल लोक व्यवहार में विवाह हो गया है ब्राह्मणों के साथ, अतः यहां पुत्र शब्द बंधु आदि जो आएगा उसका ही अर्थ है। मातृणाम और निर्देश सहचर्यण पितृषु एवं अंतर्भाव, माताओं ने रोका या सास ने रोका, ये नहीं कहा गया है, हाँ इसका अर्थ है कि पिता के साथ ही इनका अंतर्भाव समझना चाहिए। और अन्यतर व्याख्यातम जदवा दीर्घ बहु कालम श्रुतिम श्रवणम शास्त्रम व जस इति श्री परीक्षित संबोधनम, दीर्घ श्रुत ये परीक्षित महाराज के लिए संबोधन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ वही है, दीर्घ श्रुते नापि भवता ईदृशी भक्ति कुतप किम श्रुतास्ति पति अपितु नैवेति भाव, अथवा ये भाव कि दीर्घ काल तक भी कोई सुना है तो क्या ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई है उसमें जैसी ब्राह्मण स्त्रियों में, नहीं, इनका अद्भुत भाव है। तो बहुत काल तक इन्होंने सुना था तो रोक रहे थे अपने बंधु बांधव, ये दिन का समय था, गोपियां रात्रि के समय चली थी घर से, और रोका बंधुओं ने सब तरह से, लेकिन वे नहीं रोक पाई, हाथ पकड़ रहे थे, जबरदस्ती पुरुष का बल होता है, एक स्त्री को पकड़ ले तो वो नहीं जा सकती, लेकिन यहां देखिए भगवान का बल, एक तरफ श्री कृष्ण खींच रहे हैं, केवल इतना ही कह दिया कि हम यहां आए हुए, और एक तरफ बंधुओं का सारा स्नेह, परिवार का स्नेह, ससुराल का स्नेह, भाई का स्नेह, माता पिता का स्नेह, एक तरफ खींच रहा है एक जीव को, और एक तरफ भगवान का नाता उसको खींच रहा है, भगवान का संबंध, हमेशा वो बलवान है, वास्तविक संबंध श्री कृष्ण के साथ ही है सभी जीवों का। ये लोग कितना भी प्रयास किए, धर्म भय दिखाए, धर्म भय दिखा रहे थे, ठीक नहीं है, लोक में अपकीर्ति होगी, यह होगा वो होगा, और परलोक भी बिगड़ जाएगा, ऐसा ठीक नहीं है, तुम्हारा विवाह इसके साथ हुआ है, इसके साथ रहो बेटी, इस घर में रहो, ये रहो वो रहो, लेकिन वचन का तो कोई प्रभाव हुआ ही नहीं, उनके अवरोध का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, बांह पकड़ने से भी वो चली ही गई, रुकने से भी चली ही गई। और देखिए हाथ उनका खाली नहीं है, हाथ में बर्तन है भोजन का, ली हुई है, फिर भी ये वेग है कि नदी की विशाल तीव्र धारा के समान वो भगवान के पास चली ही गई। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं वैसे चली गई। एक को रोका था, या एक से तात्पर्य है कुछ को, कुछ लोगों ने पकड़ लिया किसी गोपी को, किसी ब्राह्मण पत्नी को, वो बाद में कथा आएगी, इस कथा के बाद कि पकड़ा तो क्या हुआ। पकड़ने पर वह भाव शरीर से इन स्त्रियों के पहले श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। यह शरीर यही रहा, जीवित ही रहा, भाव शरीर से वो श्री कृष्ण के पास चली गई, तो कोई भी बाकी नहीं रहे। यह है प्रेम। इसीलिए बंगला के उस गीत में गाया गया है कि जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण, भक्ति तेज जहारा पाई गोविंद चरण। भक्ति से पाया इन्होंने भगवान को। तो इस तरह से हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ करके देर तक ध्यान किया जाए, मनन किया जाए भागवत का, तब भागवत के रस का अनुभव होता है। हम लोग ऐसे जनरल सुनते हैं कि हाँ ब्राह्मण पत्नियां चली गई, मानी नहीं, लेकिन कैसे गई दृष्टांत द्वारा सुखदेव गोस्वामी उस बात को क्लियर कर रहे हैं। निम्नगह समुद्रम इव, जैसे नदियां समुद्र की तरफ जाती हैं, ऐसे श्री कृष्ण के पास चली गई। ये है भगवान का अद्भुत आकर्षण, अद्भुत आकर्षण। फिर श्री कृष्ण का वो प्रेम जाति धर्म लोक बंधन कुछ भी नहीं गिनता। जब ये गई तो उस समय श्री कृष्ण को देखा कि श्री कृष्ण जमुना जी के अशोक वन में खड़े हैं और एक सखा के कंधे पर अपना हाथ रखे हैं ऐसे बायां, और दाहिने हाथ से एक कमल घुमा रहे हैं। वो बहुत सुंदर झांकी है, उसका वर्णन कल किया जाएगा कि भगवान की क्या शोभा है और ब्राह्मण पत्नियों ने कैसे देखा। और देखने के बाद अब तो ये जैसे नदी समुद्र की तरफ जाती है तो फिर लौटने के लिए नहीं जाती है, कहीं कहीं थोड़ा लौटना देखा जाता है कलकत्ता कोलकाता में कि गंगा जी जाती है तो कुछ ज्वार भाटा होने से लौटती भी है, लेकिन वो सब छोड़ देना चाहिए। ये लौटने के लिए नहीं आई थी, इनके मन में यही था कि हम कृष्ण की हैं और कृष्ण के साथ ही रहना है, अब संसार में घर में नहीं आना है, इस तरह से गई थी। परंतु फिर भी भगवान तो ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का, लोक में समाज में इसका सम्मान रहे, इज्जत रहे, क्योंकि दुनिया कृष्ण प्रेम को नहीं समझ पाएगी। सब लोग तो बड़े बड़े महापुरुष समझते हैं उस प्रेम को, कि जो जानते हैं भगवान की महिमा को और जीव के संबंध को और भगवान के अद्भुत आकर्षण को, तो वो लोग तो इसको अप्रिशिएट करते हैं कि वाह धन्य है द्विज पत्नियां, यज्ञ पत्नियां जो श्री कृष्ण से इतना प्रेम की। लेकिन सामान्य जनता तो इसको बुरा मानेगी, अरे ये देखो क्या इन लोगों ने किया, विवाहिता होते हुए भी ब्राह्मणों की पत्नियां हो करके भी एक गोप से इतना प्रेम की, ठीक नहीं। परंतु यहां स्वाभाविक दिखाया जा रहा है कि भगवान कृष्ण क्या हैं और उनका संबंध किस तरह से जाति निर्विशेष, धर्म निर्विशेष या कुल निर्विशेष है। कोई भी धर्म, कोई भी किसी धर्म को मानता हो कृष्ण से प्रेम कर सकता है। धर्म बाधक नहीं कि हम ये धर्म मानते हैं, ये धर्म मानते हैं, हम गृहस्थ हैं, हम सन्यासी हैं, हम स्त्री हैं, हम किसी की पत्नी हैं, हम किसी के बच्चे हैं, हम इसके बाप हैं, इसलिए कृष्ण से प्रेम नहीं करना चाहिए। कृष्ण सबके हैं और सभी श्री कृष्ण के हैं, किसी भी स्थिति में कृष्ण से प्रेम किया जा सकता है। यह एक नमूना है, एक उदाहरण है ब्राह्मण पत्नियों का। तो ये किस प्रकार भगवान कृष्ण से प्रेम, कृष्ण का दर्शन करती हैं और दर्शन के बाद इनकी जो स्थिति है भगवान इनका स्वागत करते हैं। ये जो आई हैं इनके पास तो भगवान ने दुत्कारा नहीं किया, अरे कैसे आ गए, स्वागतम वो महाभाग। सीता बोले कि आपका स्वागत है, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें, ऐसा भगवान कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि ये स्वाभाविक है, हमारे प्रति सभी लोग प्रेम करते हैं क्योंकि मैं सबका परम प्रिय हूं, ऐसा वो बोलते हैं। तो तुम लोगों ने जो मेरे साथ प्रेम किया है बिल्कुल उचित किया है, लेकिन अब तुम घर लौट जाओ। भगवान यहां ये बात जब ही बोले तब ही ये दुख के समुद्र में डूब गए। जब श्री कृष्ण ने लौटने के लिए कहा तो ये बात इनके लिए बहुत दुखद हो गई। बताइए, घर के लोग रोक रहे थे, बांह पकड़ रहे थे, धन भय दिखा रहे थे, और श्री कृष्ण कहने लगे कि वहीं जाओ फिर। कितना कठिन था काज। गोपियां तो नहीं लौटी, लेकिन ये लौटी, कारण ये था कि प्रियतम के इच्छा को देखना था, इसलिए लौट गई कि इनका कृष्ण प्रेम कम था, ये बात नहीं है। इनका जन्म दूसरी जाति में हुआ था, ये दूसरे की विवाहिता पत्नियां थीं, और समाज की ऐसी मर्यादा थी कि भगवान अगर इन्हें रख लिए होते, यह बिल्कुल बेढंगा असमंजस चीज थी, अच्छा नहीं था। तो भगवान की बात को रखने के लिए ये लौट गई हैं अपने घर, लेकिन कैसे लौटी है, ये क्या जवाब दे रही है भगवान को, इस कथा को कल प्रस्तुत किया जाएगा दिन भर दोनों सिटिंग में। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।